वैदिक ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र, वेदों में निहित प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र और ज्योतिष पद्धति है। ये चलायमान विषु बिंदु के बजाय स्थिर तारकीय संदर्भ पर आधारित निरयन राशि चक्र का उपयोग करती है। इसी आधार पर चंद्र राशि, लग्न और दशा नामक ग्रह अवधियों के सहारे कर्म, व्यक्तित्व और जीवन के समय निर्धारण को समझा जाता है। वैदिक ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष का अर्थ प्रकाश का विज्ञान। ज्योतिष शब्द संस्कृत ज्योतिष से जुड़ा है, जिसका अर्थ प्रकाश या आकाशीय कंड है। इसीलिए पारंपरिक अर्थ में वैदिक ज्योतिष को दिव्य प्रकाश का अनुशासन कहा गया है। यहाँ प्रकाश का अर्थ केवल आकाश में दिखने वाली रोशनी नहीं, बल्कि वो संकेत भी है जिससे जीवन की दिशा, प्रवृत्ति और समय को पढ़ा जाता है। इस पद्धति में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति एवं गति के माध्यम से मानव जीवन के प्रारूपों को समझा जाता है। ग्रह केवल आकाशीय वस्तुएं नहीं माने जाते, वे कुंडली में अनुभव, स्वभाव, कर्म और समय की अलग अलग धाराओं को दिखाने वाले संकेत बनते हैं। ज्योतिष 6 वेदांगों में से एक है, वेदों के सहायक शास्त्र जो भारत के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं। शैक्षिक शोध प्रारंभिक वैदिक ऋचाओं को सामान्यतः ईसा पूर्व 2 सहस्राब्दी में रखता है, जबकि हिंदू परंपरा वेदों को अनादि श्रुति मानती है। वैदिक ज्योतिष भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अनुष्ठानिक, खगोलीय और दार्शनिक ढांचे के साथ विकसित हुआ। बाद की होरा पद्धतियों ने यूनानी, हेलेनिस्टिक और अन्य खगोलीय परंपराओं से भी संवाद किया। ज्योतिष शास्त्र के विस्तृत इतिहास के लिए वेदों से आधुनिक अभ्यास तक की हमारी समर्पित मार्गदर्शिका देखें। मूल दर्शन, कर्म, स्वतंत्र इच्छा और ब्रह्मांडीय समय निर्धारण। एक सामान्य भ्रांति ये है कि वैदिक ज्योतिष भाग्यवादी है, मानो आपकी कुंडली एक निश्चित पटकथा हो जिसे आप बदल नहीं सकते। पारंपरिक दृष्टिकोण इतना कठोर नहीं है। ज्योतिष कर्म का मानचित्र बनाती है, अर्थात पिछले कर्मों से संचित प्रवृत्तियां और गति। साथ ही ये पुरुषार्थ को भी मान्यता देती है, यानी सचेतन मानवीय प्रयास। अपनी जन्म कुंडली को अपने जीवन के मौसम पूर्वानुमान की तरह समझें। मौसम पूर्वानुमान वर्षा, धूप या आंधी की संभावना दिखा सकता है, लेकिन छाता लेकर निकलना है या नहीं, ये आपका निर्णय होता है। इसी तरह कुंडली उन परिस्थितियों और संभावनाओं को दिखाती है जिनमें आपका जन्म हुआ। वो निश्चितताओं की मोहर नहीं लगाती। उदाहरण के लिए, कोई कुंडली 30 से 36 वर्ष की आयु के बीच करियर में वृद्धि का प्रबल काल इंगित कर सकती है, लेकिन उस अवधि में आप अवसर पहचानते हैं या नहीं, अपने कौशल पर काम करते हैं या नहीं और सही निर्णय लेते हैं या नहीं, ये आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। इसलिए ज्योतिष समय की भाषा बताता है, पर उस समय का उपयोग कैसे करना है, ये पुरुषार्थ से तय होता है। आज ज्योतिष की 3 प्रमुख परंपराएं विशेष रूप से प्रचलित हैं। इनके नाम एक साथ सुनाई देते हैं, लेकिन हर पद्धति कुंडली को पढ़ने का अलग प्रवेश द्वार देती है। पाराशरी पद्धति।
पाराशरी पद्धति सबसे व्यापक रूप से प्रचलित धारा है। ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र, BPHS और विंशोत्तरी दशा समय निर्धारण विधि से संबद्ध है। इसकी शक्ति ये है कि ये ग्रह, भाव, राशि, दृष्टि, योग और दशा को एक व्यवस्थित ढांचे में रखकर कुंडली को चरण दर चरण पढ़ने में सहायता देती है। जैमिनी पद्धति। जैमिनी पद्धति राशि आधारित दशाओं, विशेषकर चर दशा और कारक नामक विशेष कारकत्वों का उपयोग करती है। यहां ध्यान केवल ग्रह किस भाव में बैठा है इस पर नहीं रहता। राशि स्वयं भी समय और जीवन विषयों को समझने का महत्वपूर्ण आधार बनती है। इसीलिए जैमिनी दृष्टि कुंडली की एक अलग परत खोलती है। नाड़ी पद्धति। नाड़ी पद्धति प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियों पर आधारित एक अत्यंत व्यक्तिगत पद्धति मानी जाती है। इसका स्वभाव सामान्य नियमों की तुलना में व्यक्ति विशेष के जीवन विवरण पर अधिक केंद्रित है। इसीलिए नाड़ी परंपरा का उल्लेख आते ही पाठक को समझना चाहिए कि यहाँ ज्योतिष का स्वर अधिक व्यक्तिगत और प्रसंग विशेष हो जाता है। अधिकांश आधुनिक ज्योतिषी, जिनमें परामर्श मंच भी शामिल है, मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति का अनुसरण करते हैं। इसका कारण इसका व्यवस्थित दृष्टिकोण और सुप्रलेखित व्याख्यात्मक ढांचा है, जिसके सहारे आरंभिक विद्यार्थी भी कुंडली को क्रमबद्ध रूप से समझना शुरू कर सकता है। वैदिक कुंडली के मूल तत्व। प्रत्येक वैदिक जन्म कुंडली 4 मौलिक घटकों से निर्मित होती है। इन्हें अलग अलग याद करना पर्याप्त नहीं है। कुंडली पढ़ते समय यही 4 घटक मिलकर अर्थ बनाते हैं। ग्रह बताता है कौन सी शक्ति काम कर रही है, राशि उसका स्वभाव दिखाती है, भाव जीवन का क्षेत्र बताता है और नक्षत्र उस अनुभव की सूक्ष्म चंद्र लय खोलता है। इसीलिए आरंभिक अध्ययन में इन मूल तत्वों को धीरे धीरे समझना सबसे उपयोगी रहता है। किसी भी कुंडली, चाहे अपनी हो या किसी और की, को पढ़ने की कुंजी यहीं से मिलती है। ग्रह 9 ब्रह्मांडीय शक्तियां। शास्त्रीय वैदिक ज्योतिष 9 ग्रह का उपयोग करती है। इन्हें प्रायः प्लैनेट्स कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में ग्रह का अर्थ केवल भौतिक ग्रह नहीं है। इसका शाब्दिक भाव है वह जो पकड़ता है या प्रभावित करता है। इसीलिए ज्योतिषीय भाषा में ग्रह जीवन की किसी शक्ति, प्रवृत्ति या अनुभव को पकड़कर दिखाता है। पाश्चात्य ज्योतिष के विपरीत, ज्योतिष शास्त्र अपने शास्त्रीय ढांचे में यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो का उपयोग नहीं करता।
यहां 9 नवग्रह आधार बनते हैं
और हर ग्रह अपने मूल कारकत्वों के साथ कुंडली में पढ़ा जाता है। सूर्य, सूर्य, आत्मविश्वास, अधिकार, उद्देश्य और आत्मा। चंद्रमा, चंद्र, मन, भावनाएं, आदतें और सुख। मंगल, मंगल, कर्म, साहस, इच्छा शक्ति और संघर्ष। बुध, बुध, विचार, वाणी, व्यापार और शिक्षा। बृहस्पति, बृहस्पति, विकास, ज्ञान, मार्गदर्शन और श्रद्धा। शुक्र, शुक्र, प्रेम, कला, सुख सुविधा और संबंध। शनि, शनि, अनुशासन, कर्तव्य, काल और परिपक्वता। राहु, राहु, इच्छा, महत्वाकांक्षा और अपरंपरागत मार्ग। केतु, केतु, वैराग्य, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक विकास। इन कारकत्वों को अलग अलग शब्दार्थ की तरह नहीं पढ़ा जाता। सूर्य यदि उद्देश्य दिखाता है तो वो किस राशि और भाव में बैठा है, इससे पता चलता है कि उद्देश्य किस स्वभाव और किस जीवन क्षेत्र में प्रकट होगा। इसी तरह चंद्रमा मन को दिखाता है, पर उसका नक्षत्र और दशा संबंध ये समझाते हैं कि वही मन जीवन में कब और कैसे अधिक सक्रिय अनुभव होगा। राशियां, 12 राशि चक्र क्षेत्र। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां पाश्चात्य ज्योतिष के समान राशि क्रम का अनुसरण करती हैं, मेष से मीन तक। अंतर राशि क्रम में नहीं, मापने के संदर्भ में है। ज्योतिष निरयण राशि चक्र का उपयोग करता है, इसीलिए आपकी वैदिक राशि प्रायः पाश्चात्य राशि से एक राशि पहले दिखाई दे सकती है। प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह, एक तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और एक गुण, गुण सत्व, रजस या तमस होता है। ये तीनों मिलकर राशि का चरित्र बनाते हैं। राशि कुंडली में उस भूमि की तरह है जहां ग्रह अपना काम करता है, इसलिए ग्रह वही रहता है, पर राशि बदलने से उसकी अभिव्यक्ति का रंग बदल जाता है। उदाहरण के लिए मेष, मेष एरीज का स्वामी मंगल है। ये अग्नि तत्व से संबंधित है और इसमें राजसिक यानी कर्म उन्मुख गुण है, इसीलिए मेष का स्वभाव पहल प्रधान, प्रत्यक्ष और साहसी बनता है। जब कोई ग्रह मेष में बैठता है तो उसकी अभिव्यक्ति में इसी तेज, आरंभिक और कर्मशील लय का रंग जुड़ता है। भाव, 12 जीवन क्षेत्र। जहां राशियां बताती हैं कि ऊर्जा कैसे अभिव्यक्त होती है, वहीं भाव बताते हैं कि ये आपके जीवन में कहां प्रकट होती है। इसी कारण एक ही ग्रह अलग अलग भावों में बैठकर जीवन के अलग क्षेत्रों को सक्रिय कर सकता है। 12 भाव विशिष्ट जीवन क्षेत्रों से संबंधित है। आरंभिक समझ के लिए कुछ प्रमुख भाव इस प्रकार है। प्रथम भाव लग्न, स्वयं, जीवन शक्ति, पहचान और रूप रंग। द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी और आहार। चतुर्थ भाव गृह, माता, सुख और आंतरिक शांति। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक व्यवहार। दशम भाव करियर, प्रतिष्ठा और दृश्य उपलब्धि। द्वादश भाव व्यय, विदेश संबंध और आध्यात्मिक मुक्ति। भावों को समूहों में भी पढ़ा जाता है।
केंद्र स्थिरता प्रदान करते हैं, त्रिकोण सौभाग्य लाते हैं और दूस्थान उन चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विकास को उत्प्रेरित करती हैं। इसीलिए भाव केवल सूची नहीं है, वे कुंडली के भीतर जीवन क्षेत्रों का पूरा ढांचा बनाते हैं। नक्षत्र 27 चंद्र भवन। यही वैदिक ज्योतिष सभी अन्य ज्योतिषीय पद्धतियों से वास्तव में भिन्न होती है। 27 नक्षत्र चंद्र भवन है, आकाश के वे खंड जिनमें प्रत्येक 13 डिग्री 20 मिनट का विस्तार रखता है। चंद्रमा अपने मासिक चक्र के दौरान इन नक्षत्रों से होकर गुजरता है, इसलिए नक्षत्र मन, स्मृति और अनुभूति की सूक्ष्म परतों से गहराई से जुड़े माने जाते हैं। आपका जन्म नक्षत्र वो नक्षत्र है जहां जन्म के समय चंद्रमा स्थित था। वैदिक परंपरा में इसे सूर्य राशि से अधिक व्यक्तिगत रूप से प्रकाशक माना जाता है, क्योंकि ये मन की पहली चंद्र छाप दिखाता है। राशि व्यापक पृष्ठभूमि देती है, जबकि नक्षत्र उसी पृष्ठभूमि के भीतर अनुभूति की सूक्ष्म धारा खोलता है। प्रत्येक नक्षत्र का एक अधिष्ठाता देवता, एक ग्रहस्वामी, एक प्रतीक और 4 पद यानी चरण होते हैं। उदाहरण के लिए रोहिणी का स्वामी चंद्रमा है और इसके देवता ब्रह्मा है, इसीलिए रोहिणी को सौंदर्य, विकास और सृजनात्मक पोषण से जोड़ा जाता है। आपका नक्षत्र ये भी निर्धारित करता है कि आप किस ग्रह अवधि यानी दशा में जन्मे थे, इसी कारण नक्षत्र वैदिक भविष्यवाणी ज्योतिष की नींव बन जाता है। वैदिक ज्योतिष पाश्चात्य ज्योतिष से कैसे भिन्न है? यदि आप पहले से अपनी पाश्चात्य राशि जानते हैं तो आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आपकी वैदिक राशि भिन्न है। इसका अर्थ ये नहीं कि एक पद्धति सही और दूसरी गलत है। दोनों अलग संदर्भ बिंदुओं से आकाश को मापती हैं, इसीलिए परिणाम भी अलग दिख सकते हैं। गहन विश्लेषण के लिए हमारी वैदिक बनाम पाश्चात्य ज्योतिष तुलना देखें। निर्यन बनाम सायन राशि चक्र, अयनांश का अंतर। पाश्चात्य ज्योतिष सायन राशि चक्र का उपयोग करता है जो शून्य डिग्री मेष को वसंत विषुव यानी 20-21 मार्च पर स्थिर करता है, यानी इसका आरंभ बिंदु ऋतु चक्र से जुड़ा रहता है। वैदिक ज्योतिष निर्यन यानी साइडीरियल राशि चक्र का उपयोग करता है। इसमें शून्य डिग्री मेष को ऋतु आधारित विषुव के बजाय स्थिर तारकीय संदर्भ से मापा जाता है। चूंकि पृथ्वी की धुरी धीरे धीरे डोलती है यानी विषुव अयन, इसलिए ये दो संदर्भ बिंदु लगभग 24 डिग्री तक अलग हो गए हैं। इसी अंतर को अयनांश यानी अयनांश कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो सायन पद्धति ऋतुओं से बंधे आरंभ बिंदु को प्राथमिकता देती है, जबकि निर्यन पद्धति स्थिर तारकीय पृष्ठभूमि को। यही छोटा सा संदर्भ अंतर कुंडली में बड़ा दृश्य परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि ग्रहों की राशि स्थिति उसी आरंभ बिंदु से मापी जाती है। व्यावहारिक रूप से इसका परिणाम ये हो सकता है कि यदि आप पाश्चात्य ज्योतिष में वृषभ हैं तो वैदिक ज्योतिष में संभवतः मेष हों। ये कोई गणना त्रुटि नहीं है, दोनों पद्धतियां वैध हैं, पर वे आकाश को अलग संदर्भ ढांचों से पढ़ती हैं। ज्योतिष में चंद्रमा की केंद्रीय भूमिका।
पाश्चात्य ज्योतिष प्रायः सूर्य राशि से आरंभ होता है। जब कोई कहता है मैं सिंह हूं, तो सामान्यतः उसका अर्थ ये होता है कि जन्म के समय सूर्य सिंह राशि में था। वैदिक ज्योतिष में लग्न उदय राशि आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और उसके बाद चंद्र राशि का स्थान आता है। चंद्रमा मनस मन को नियंत्रित करता है, इसी से आपकी भावनात्मक प्रकृति, मानसिक प्रारूप और अत्यंत महत्वपूर्ण दशाचक्र जुड़े होते हैं। इसीलिए वैदिक पठन में सूर्य को छोड़ नहीं दिया जाता, पर शुरुआत अक्सर उस बिंदु से होती है जहां जीवन प्रत्यक्ष रूप से खुलता है। लग्न शरीर और जीवन दृष्टि देता है और चंद्रमा मन की प्रतिक्रिया तथा समय की दशा रेखा को समझने में सहायता करता है। एक नज़र में तुलना। नीचे की तालिका दोनों पद्धतियों के मुख्य भेद एक साथ दिखाती है। इसे श्रेष्ठता की सूची की तरह नहीं, बल्कि दो अलग ज्योतिषीय दृष्टियों के मानचित्र की तरह पढ़ें। इस तुलना का व्यवहारिक अर्थ यह है कि वैदिक ज्योतिष में वही जन्म विवरण अलग ढंग से खुल सकता है। यहां लग्न, चंद्रमा, नक्षत्र, दशा और निरयन राशि चक्र मिलकर पठन बनाते हैं। इसलिए किसी भी वैदिक कुंडली को पाश्चात्य सूर्य राशि के सीधे अनुवाद की तरह पढ़ना पर्याप्त नहीं होता। कुंडली, जन्मचार्ट, आपका ब्रह्मांडीय खाका। कुंडली में क्या होता है? कुंडली आपकी वैदिक जन्म कुंडली है। आपके जन्म के ठीक उसी क्षण और स्थान पर आकाश का एक दृश्य चित्र। ये सभी 9 ग्रहों को 12 भावों और राशियों में मानचित्रित करती है, जिससे एक अद्वितीय ब्रह्मांडीय अंगुली चिन्ह बनता है। जब तक दो व्यक्ति एक ही स्थान पर एक ही सेकंड में जन्म ना लें, कोई भी दो कुंडलियां समान नहीं होती। कुंडली को केवल एक चार्ट की तरह नहीं, बल्कि कई परतों वाले मानचित्र की तरह पढ़ना चाहिए। पहले ग्रहों की स्थिति दिखती है, फिर वे किन भावों में बैठे हैं, किस नक्षत्र में हैं, एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं और कौन से योग बना रहे हैं। संपूर्ण विवरण के लिए हमारी कुंडली संपूर्ण मार्गदर्शिका देखें। आपकी कुंडली में मुख्यतः ये परतें देखी जाती हैं। ग्रह स्थितियां, प्रत्येक ग्रह किस राशि और भाव में स्थित है। दृष्टि, दृष्टि ग्रह कुंडली में एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। नक्षत्र, प्रत्येक ग्रह का चंद्र भवन, विशेषकर चंद्रमा का। योग, विशेष ग्रह संयोजन जो जीवन की विषय वस्तुओं को प्रवर्धित करते हैं। दशा समय रेखा, आपकी व्यक्तिगत ग्रह अवधियों का क्रम। सटीक जन्म समय क्यों महत्वपूर्ण है। लग्न उदय राशि लगभग हर 2 घंटे में बदलता है और चंद्रमा लगभग प्रतिदिन नक्षत्र बदलता है, इसीलिए जन्म समय में 10-15 मिनट की त्रुटि भी आपका लग्न बदल सकती है। लग्न बदलते ही प्रत्येक ग्रह की भाव स्थिति बदल जाती है और फिर समग्र कुंडली व्याख्या भी अलग दिशा ले सकती है। इसीलिए वैदिक ज्योतिषी आधिकारिक अभिलेखों से जन्म समय प्राप्त करने पर बल देते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र आदर्श माना जाता है, क्योंकि कुंडली का सबसे जीवंत भाग वही है जो जन्म के वास्तविक क्षण से जुड़ा है। व्यावहारिक उदाहरण, मुंबई में एक ही दिन जन्मे 2 व्यक्तियों पर विचार करें। एक सुबह 5:45 बजे और दूसरा 6:15 बजे। पहले का लग्न वृश्चिक, गहन, अनुसंधान उन्मुख हो सकता है, जबकि दूसरे का धनु लग्न, आशावादी, शिक्षण उन्मुख हो सकता है। दिन और शहर समान है, लेकिन लग्न बदलते ही जीवन विषयों की दिशा अलग हो जाती है। विभागीय कुंडलियां, वर्ग, जीवन क्षेत्रों में गहन दृष्टि। मुख्य जन्म कुंडली को D1 या राशि कुंडली कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष विभागीय कुंडलियों का उपयोग करती है। ये गणितीय रूप से व्युत्पन्न उपकुंडलियां हैं जो विशिष्ट जीवन क्षेत्रों में गहराई से दृष्टि डालती हैं। सबसे महत्वपूर्ण नवांश है D9 है।
ये आपकी कुंडली की गहरी क्षमता को प्रकट करती है, विशेषकर विवाह और आध्यात्मिक विकास के संदर्भ में। इस तरह D1 आधार मानचित्र देता है और विभागीय कुंडलियां उसी मानचित्र के भीतर अलग जीवन क्षेत्रों को अधिक सूक्ष्मता से देखने में सहायता करती हैं। परामर्श इन कुंडलियों की गणना स्विस एफेमेरिस का उपयोग करके करता है, नासा JPL डेटा पर आधारित उच्च सटीकता एफेमेरिस, जो 8 सेकंड तक की सटीकता का समर्थन करता है। ग्रह योग, जीवन विषयों को आकार देने वाले संयोजन। वैदिक ज्योतिष में योग क्या है? ज्योतिषीय संदर्भ में योग का अर्थ है संयोजन। जब ग्रह किसी विशेष विन्यास में आते हैं तो वे जीवन के परिणामों को प्रवर्धित या संशोधित कर सकते हैं। इसलिए योग केवल 2 ग्रहों का साथ होना नहीं है, ये देखना है कि उनका संबंध कुंडली में किस जीवन विषय को बल दे रहा है। योग ज्योतिष शास्त्र के सबसे शक्तिशाली व्याख्यात्मक साधनों में से एक है। कई बार किसी कुंडली के योग व्यक्तिगत ग्रह स्थितियों की तुलना में जीवन पथ के बारे में अधिक स्पष्ट संकेत देते हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि ग्रहों की शक्तियां मिलकर कौन सा विषय बना रही हैं। फिर भी एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है, योगों को हमेशा संपूर्ण कुंडली के संदर्भ में पढ़ना चाहिए। एक राजयोग जिसमें भाग लेने वाले ग्रह दुर्बल या पीड़ित हों, वह उसी योग से भिन्न परिणाम देगा जिसमें ग्रह बलवान और सुस्थित हों। इसलिए योग पारंपरिक व्याख्यात्मक ढांचा है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं। शुभ योग, मंगलकारी संयोजन। शास्त्रीय और परवर्ती ज्योतिष ग्रंथों में कई मंगलकारी योगों की चर्चा मिलती है। आरंभिक समझ के लिए ये कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण हैं। गजकेसरी योग तब बनता है जब बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र 1, 4, 7 या 10वें भाव में हो। ये ज्ञान, सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ा माना जाता है और अनेक शिक्षकों और नेताओं की कुंडलियों में पाया जाता है। बुधादित्य योग, सूर्य और बुध एक ही राशि में, तीक्ष्ण बुद्धि, वाक्पटुता और बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है। पंच महापुरुष योग, 5 शक्तिशाली योग जो तब बनते हैं जब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि अपनी स्वराशि या उच्च राशि में केंद्र में हों। उदाहरण के लिए हंस योग बृहस्पति कर्क, धनु या मीन में केंद्र में आध्यात्मिक ज्ञान और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है। रुचक योग मंगल मेष, वृश्चिक या मकर में केंद्र में असाधारण साहस और नेतृत्व से जुड़ा माना जाता है। चुनौतीपूर्ण योग कठिनाई से विकास। सभी योग सरल या सहज नहीं होते, कुछ योग उन क्षेत्रों को इंगित करते हैं जहां जीवन सघन चुनौतियां प्रस्तुत करता है। यहां कठिनाई केवल बाधा नहीं रहती, वही कई बार विकास का कारण भी बनती है। काल सर्प योग, सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य घिरे हुए, प्रायः अटके रहने या असामान्य जीवन प्रारूपों का अनुभव करने से संबंधित। अनेक सफल व्यक्तियों की कुंडली में ये योग होता है, चुनौती ही उत्प्रेरक बन जाती है। शकट योग बृहस्पति चंद्रमा से 6, 8 या 12वें भाव में, भाग्य में उतार चढ़ाव ला सकता है, परंतु सहनशीलता और संसाधनशीलता भी विकसित करता है। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी योग है जहां बृहस्पति चंद्रमा से 10वें भाव में कर्क अपनी उच्च राशि में स्थित है। ये योग ज्ञान, मान्यता और मार्गदर्शन की क्षमता को बल दे सकता है। यदि उसी समय बृहस्पति की प्रबल महादशा चल रही हो तो वही योग समय में सक्रिय होकर अधिक स्पष्ट अनुभव बन सकता है। ऐसी अवधि में करियर उन्नति, अपने क्षेत्र में मान्यता या शिक्षण और मार्गदर्शन का अवसर सामने आ सकता है। इस उदाहरण से नियम समझ आता है। योग कुंडली में विषय दिखाता है और दशा बताती है कि वो विषय कब अधिक सक्रिय होगा। दशाएं और गोचर, समय का आयाम। यदि योग बताते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से विषय मौजूद हैं, तो दशाएं बताती हैं कि वे विषय कब सक्रिय होते हैं। यही समय आयाम वैदिक ज्योतिष को विशिष्ट रूप से पूर्वानुमानात्मक बनाता है। कुंडली में कोई संभावना हो सकती है, पर वो जीवन में कब उभरती है, इसे समझने के लिए दशा और गोचर दोनों को साथ पढ़ना पड़ता है। विंशोत्तरी दशा, 120 वर्ष का ग्रह चक्र। सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त समय निर्धारण पद्धति विंशोत्तरी दशा है। ये 120 वर्षीय ग्रह चक्र है जिसमें प्रत्येक ग्रह निश्चित वर्षों तक शासन करता है। इस क्रम से कुंडली में जीवन के अलग अलग अध्याय पढ़े जाते हैं। केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, बृहस्पति 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष। इस क्रम को केवल वर्षों की सूची समझकर छोड़ना नहीं चाहिए,
हर ग्रह अपनी अवधि में अपनी प्रकृति, अपने कारकत्व और कुंडली में अपनी स्थिति से जुड़े विषयों को सामने ला सकता है। इसलिए दशा पढ़ते समय ग्रह का नाम, उसकी अवधि और कुंडली में उसका स्थान तीनों साथ देखे जाते हैं। आप किस दशा में जन्मे, ये आपके जन्म के समय चंद्रमा के नक्षत्र पर निर्भर करता है। यहाँ नक्षत्र केवल व्यक्तित्व का संकेत नहीं देता,
वह आपकी दशा समय रेखा का प्रारंभिक बिंदु भी बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म चंद्रमा पुष्य नक्षत्र शनि शासित में होने पर हुआ, तो आपकी जन्म दशा शनि है। उस क्षण शनि की 19 वर्षीय अवधि में जितना भाग शेष है, वही आपकी संपूर्ण दशा समय रेखा की शुरुआत निर्धारित करता है। इसलिए जन्म नक्षत्र और दशा को अलग अलग नहीं, एक ही समय सूत्र की दो कड़ियों की तरह पढ़ा जाता है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। दशाएं परतों ने कार्य करती हैं, जैसे किसी पुस्तक में पूरा भाग, फिर उसके भीतर अध्याय और फिर अध्याय के भीतर छोटा खंड। इससे ज्योतिषी बड़े समय विषय से लेकर अधिक सूक्ष्म समय निर्धारण तक जा सकता है। महादशा प्रमुख अवधि वर्षों से दशकों तक, जो प्रभावी ग्रहीय विषय निर्धारित करती है। अंतरदशा भुक्ति, महादशा के भीतर एक उपअवधि, जो दूसरे ग्रह के प्रभाव से विषय को परिष्कृत करती है। प्रत्यंतरदशा घटनाओं के और भी सूक्ष्म समय निर्धारण के लिए एक उपअवधि। व्यावहारिक उदाहरण, बृहस्पति महादशा के दौरान समग्र विस्तार, अध्ययन और आध्यात्मिक विकास जैसे विषय प्रमुख हो सकते हैं। यदि उसी महादशा में शुक्र अंतरदशा चल रही हो, तो वही बृहस्पति विषय संबंधों, कला या आर्थिक सुख के क्षेत्र में अभिव्यक्त हो सकता है। सरल भाषा में, महादशा मुख्य वातावरण देती है और अंतरदशा बताती है कि उस वातावरण में कौन सा विशिष्ट क्षेत्र अधिक सक्रिय हो रहा है। गोचर दशाओं के साथ कैसे संवाद करते हैं। गोचर ग्रहों की वर्तमान वास्तविक समय स्थितियां हैं। वे दशा विषयों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दशा बताती है कि जीवन का कौन सा अध्याय खुला है और गोचर उस अध्याय में कब कोई घटना या दबाव अधिक स्पष्ट हो सकता है, ये दिखाते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना के लिए सामान्यतः दशा अवधि और सहायक गोचर के बीच संरेखण आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, शनि महादशा के दौरान शनि का आपके 10वें भाव से गोचर करियर संबंधी विषयों को कहीं अधिक तीव्र कर सकता है। वही गोचर यदि बृहस्पति अवधि में हो, तो उसका स्वर अलग तरह से अनुभव हो सकता है। इसलिए दशा और गोचर को साथ पढ़ना समय निर्धारण की रीढ़ बनता है। आज वैदिक ज्योतिष के व्यावहारिक अनुप्रयोग। वैदिक ज्योतिष केवल अमूर्त दर्शन नहीं है, इसका उपयोग जीवन के ठोस निर्णयों में भी किया जाता है। कौन सा समय अनुकूल है, किस क्षेत्र में स्वाभाविक बल है, संबंधों में कौन से सामंजस्य और तनाव दिखते हैं और चुनौतीपूर्ण अवधि में कौन से उपाय सहायक माने जाते हैं, इसीलिए इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग दैनिक जीवन से जुड़े रहते हैं। करोड़ों लोग निर्णय निर्माण में ज्योतिषीय संकेतों को एक मार्गदर्शक संदर्भ की तरह देखते हैं, अंतिम आदेश की तरह नहीं। करियर और वित्तीय मार्गदर्शन। करियर और वित्तीय संकेतों में 10वां भाव करियर, 2रा भाव धन और 11वां भाव लाभ विशेष रूप से देखे जाते हैं। इनके स्वामी ग्रहों की शक्ति और स्थिति के साथ मिलकर ये समझा जाता है कि कौन से व्यावसायिक क्षेत्र आपकी प्राकृतिक शक्तियों से मेल खाते हैं।
उदाहरण के लिए, 10वें भाव में प्रबल बुध संचार, प्रौद्योगिकी या वाणिज्य में सफलता सुझा सकता है, लेकिन केवल भाव देखकर निर्णय नहीं किया जाता। दशा समय रेखा ये पहचानने में सहायता करती है कि करियर में परिवर्तन या सफलता कब सर्वाधिक संभावित है। इस तरह कुंडली क्षेत्र दिखाती है और दशा समय की खिड़की बताती है। संबंध अनुकूलता, कुंडली मिलान। भारतीय परंपरा में कुंडली मिलान विवाह से पूर्व एक मानक चरण रहा है। इसमें दो जन्म कुंडलियों की अनुकूलता की तुलना की जाती है, ताकि संबंध में स्वाभाविक सामंजस्य और संभावित घर्षण दोनों को समझा जा सके। अष्टकूट पद्धति साझेदारों के बीच अनुकूलता के 8 आयामों का मूल्यांकन करती है और 36 में से एक अंक देती है। फिर भी कोई एकल अंक किसी संबंध की सफलता निर्धारित नहीं करता। ये विश्लेषण संकेत देता है कि कहाँ सहजता है, कहाँ सावधानी चाहिए और किन क्षेत्रों में दोनों व्यक्तियों को अधिक सजग होकर चलना पड़ सकता है। मुहूर्त, शुभ समय का चयन। मुहूर्त ज्योतिष की वो शाखा है जो शुभ समय के चयन से जुड़ी है। इसका प्रश्न सरल है, किसी महत्वपूर्ण कार्य को किस तिथि और समय पर आरंभ किया जाए ताकि समय की धारा अधिक अनुकूल रहे। विवाह, व्यवसाय प्रारंभ, गृह प्रवेश या नए उद्यम जैसे कार्यों में मुहूर्त देखा जाता है। इसके लिए पंचांग, वैदिक कैलेंडर, दिन का नक्षत्र, ग्रहों के गोचर और व्यक्ति की जन्म कुंडली पर विचार करके अवसर की खिड़कियां पहचानी जाती हैं। इसलिए मुहूर्त केवल शुभ दिन चुनना नहीं, बल्कि कार्य, व्यक्ति और समय के बीच सामंजस्य देखना है। स्वास्थ्य संकेतक और उपचारात्मक उपाय।
प्रत्येक ग्रह और भाव विशिष्ट शरीर के अंगों और स्वास्थ्य प्रवृत्तियों से संबंधित माना जाता है। छठा भाव रोग और प्रतिरक्षा से जुड़ा है, जबकि ग्रह पीड़ा उन क्षेत्रों की ओर संकेत कर सकती है जहां ध्यान देने की आवश्यकता हो। वैदिक ज्योतिष उपाय भी प्रदान करती है। इनमें रत्न अनुसंचाएं, मंत्र जाप, दान कर्म या जीवनशैली समायोजन शामिल हो सकते हैं। परंपरागत रूप से इन्हें दुर्बल ग्रहों को बलवान करने या चुनौतीपूर्ण अवधियों को शमित करने हेतु माना जाता है। इस तरह उपाय कुंडली के कठिन संकेतों को सचेतन कर्म से संतुलित करने का मार्ग देते हैं। वैदिक ज्योतिष की यात्रा कैसे शुरू करें? आपको क्या चाहिए? जन्म तिथि, समय और स्थान। एक सटीक वैदिक जन्म कुंडली बनाने के लिए तीन जानकारियां आवश्यक होती हैं। ये तीनों मिलकर जन्म के क्षण को पृथ्वी और आकाश दोनों संदर्भों में ठीक ठीक स्थापित करती हैं। जन्म तिथि, कैलेंडर तिथि, जन्म समय जितना सटीक हो सके आदर्श रूप से जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल रिकॉर्ड से। जन्म स्थान, शहर और देश जो भौगोलिक निर्देशांक और समय क्षेत्र के आधार पर सही लग्न की गणना के लिए आवश्यक है। यदि आपको अपना सटीक जन्म समय नहीं पता, तब भी आप अपनी चंद्र राशि और ग्रह स्थितियों से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लग्न और भाव स्थिति अनुमानित होंगी, इसलिए भाव आधारित व्याख्या में सावधानी रखनी होगी।
ऑनलाइन अपनी पहली कुंडली बनाएं। परामर्श स्विस एफेमेरिस खगोलीय गणनाओं का उपयोग करके कुछ ही सेकंड में आपकी संपूर्ण वैदिक जन्म कुंडली तैयार करता है। आपको केवल अपना जन्म विवरण दर्ज करना होता है। इसके बाद सभी 9 ग्रहों की स्थिति, भाव स्थापना, नक्षत्र विवरण, सक्रिय दशा अवधियां और आपकी कुंडली में विद्यमान योगों सहित पूर्ण राशि कुंडली प्राप्त होती है। अपनी कुंडली स्वयं पढ़ना सीखें। अपनी पहली कुंडली देखते समय सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश ना करें। 3 बातों से शुरू करें, ये आपको कम समय में सबसे अधिक आधारभूत समझ देंगी। आपका लग्न, उदय राशि, ये वो लेंस है जिसके माध्यम से आपकी पूरी कुंडली कार्य करती है। ये आपके व्यक्तित्व, रूप रंग और जीवन दृष्टिकोण को आकार देता है। आपके चंद्र राशि और नक्षत्र, ये आपकी भावनात्मक प्रकृति और मानसिक प्रारूपों को प्रकट करता है। ये प्रायः सूर्य राशि से अधिक व्यक्तिगत रूप से गूंजता है। आपकी वर्तमान महादशा और अंतरदशा, ये बताती है कि अभी आपके जीवन में कौन से ग्रहीय विषय सक्रिय हैं और वे कब तक जारी रहेंगे। इसके बाद आप अपनी कुंडली के योगों, भाव स्वामियों और ग्रह बलों का अन्वेषण कर सकते हैं। हर नई अवधारणा उसी कुंडली की आपकी समझ को और गहरा करेगी। ये एक ऐसा मानचित्र है जो एक ही बार में पूरा नहीं खुलता, धीरे धीरे देखने पर इसकी नई परतें सामने आती रहती हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या वैदिक ज्योतिष पाश्चात्य ज्योतिष से अधिक सटीक है? वैदिक और पाश्चात्य ज्योतिष भिन्न पद्धतियां हैं, प्रतिस्पर्धी सटीकता दावे नहीं। वैदिक ज्योतिष स्थिर तारकीय संदर्भ पर आधारित निरयन राशिचक्र का उपयोग करती है और दशा जैसे समय निर्धारण उपकरण जोड़ती है जो मानक पाश्चात्य ज्योतिष में प्रयुक्त नहीं होते। अनेक अभ्यासकर्ता जीवन घटना समय निर्धारण के लिए वैदिक ज्योतिष को अधिक सटीक पाते हैं, जबकि पाश्चात्य ज्योतिष मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में उत्कृष्ट है। वैदिक ज्योतिष परामर्श के लिए मुझे क्या चाहिए? आपको 3 जानकारियां चाहिए, आपकी सटीक जन्म तिथि, जन्म समय जितना सटीक हो सके आदर्श रूप से जन्म प्रमाण पत्र से, और जन्म स्थान। जन्म समय आपका लग्न निर्धारित करता है जो लगभग हर 2 घंटे में बदलता है, इसलिए सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी वैदिक राशि मेरी पाश्चात्य राशि से भिन्न क्यों है? वैदिक ज्योतिष निरयन राशि चक्र का उपयोग करती है जिसे ऋतु आधारित विषुव के बजाय स्थिर तारकीय संदर्भ से मापा जाता है। विषुव अयन से लगभग 24 अंश का अंतर बनता है जिसे अयनांश कहते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी वैदिक सूर्य राशि प्रायः आपकी पाश्चात्य सूर्य राशि से 1 राशि पहले होती है। उदाहरण के लिए एक पाश्चात्य मेष वैदिक मीन हो सकता है। क्या वैदिक ज्योतिष भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है? वैदिक ज्योतिष कार्मिक प्रवृत्तियों और समय चक्रों, दशाओं की पहचान करती है जो इंगित करते हैं कि कुछ जीवन विषय कब सक्रिय होने की संभावना है। ये निश्चित अपरिहार्य घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं करती।
इसे अपने जीवन के लिए मौसम पूर्वानुमान के रूप में सोचें। ये परिस्थितियां और संभावनाएं दर्शाती हैं, निश्चितताएं नहीं, और आपके निर्णय सदैव परिणामों को प्रभावित करते हैं। क्या वैदिक ज्योतिष वैज्ञानिक है? वैदिक ज्योतिष सटीक खगोलीय गणनाओं का उपयोग करती है, इसलिए इसमें संदर्भित ग्रह स्थितियां सत्यापन योग्य हैं। इसका व्याख्यात्मक ढांचा प्रयोगशाला विज्ञान नहीं बल्कि पारंपरिक प्रतीकात्मक प्रणाली है। परामर्श जैसे आधुनिक उपकरण खगोलीय गणनाओं के लिए स्विस एफेमेरिस का उपयोग करते हैं जो नासा JPL डेटा पर आधारित उच्च सटीकता एफेमेरिस है। परामर्श के साथ अन्वेषण करें।
आपने अभी वैदिक ज्योतिष का मूल ढांचा जान लिया, ग्रहों और भावों से लेकर योगों और दशाओं तक। अब अगला स्वाभाविक कदम इन अवधारणाओं को अपनी कुंडली में देखना है। जब वही शब्द आपके जन्म विवरण के साथ जुड़ते हैं तो ग्रह, भाव, नक्षत्र और दशा केवल सिद्धांत नहीं रहते, वे आपके जीवन मानचित्र की परतें बनकर सामने आते हैं। परामर्श पर अपनी निःशुल्क कुंडली बनाएं, अपनी ग्रह स्थितियों का अन्वेषण करें, जाने कि कौन से योग सक्रिय हैं और देखें कि आपकी वर्तमान दशा अवधि आपके जीवन के इस अध्याय के बारे में क्या संकेत कर सकती है। यही अभ्यास वैदिक ज्योतिष को पढ़ने की जानकारी से आगे ले जाकर अनुभव में बदलता है। कुंडली सुविधाएं देखें।